नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार अगले महीने से 187 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत करेगी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद के गठन की मांग की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा सांसद रामवीर सिंह पितुड़ी के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गयी। अब समाचार विस्तार से। राजधानी में नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए दिल्ली सरकार अगले महीने से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी। वर्तमान में दिल्ली में 168 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं। अगले महीने से 187 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सुलभ, किफायती और सर्वांगीण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए शहर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य दिल्ली वासियों को उनके घर के निकट प्राथमिक और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार अब अपने स्वास्थ्य केंद्र किराए के स्थलों पर संचालित नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के पास आरोग्य मंदिरों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 168 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं, जबकि 187 अतिरिक्त केंद्रों का उद्घाटन दिसंबर तक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन आरोग्य मंदिरों की स्थापना आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत की जा रही है, जिसके अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत कर एक समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों का उद्देश्य केवल सामान्य बीमारियों का उपचार और आवश्यक रेफरल तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार मानकीकृत, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना भी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्राप्त नामांकनों की छटनी बुधवार को की जाएगी और प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम 15 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। निगम के जिन वार्डों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका भी, डिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर वार्ड शामिल हैं। मतदान इस महीने की 30 तारीख को होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने ग्रेटर कैलाश से ईशना गुप्ता, चांदनी चौक से हर्ष शर्मा और दक्षिणपुरी से रामस्वरूप कनौजिया के नामों की घोषणा की है। वहीं विनोद नगर से गीता रावत, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल, मुंडका से अनिल लाकड़ा और नारायणा से राजन अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त संगम विहार ए से अनुज शर्मा, शालीमार बाग बी से बबीता अहलावत, द्वारका बी से राजबाला सहरावत और ढिचाऊ कला से नीतू केशव चौहान चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा यह सूची जारी की गई है। भाजपा ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों को लेकर टिप्पणी की है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ढिचाऊ कला सीट से केशव चौहान के नाम की घोषणा की है, जबकि यह सीट महिला आरक्षित है। वहीं भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि विनोद नगर वार्ड से पूर्व पार्षद गीता रावत को फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद के गठन की मांग की है। एक रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा निकाली गई। स्थानीय भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के नेतृत्व में यह पदयात्रा संगम विहार से शुरू हुई और क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। इस अवसर पर श्री बिदुड़ी ने कहा कि सरदार पटेल लोकतंत्र के स्तंभ, भारत की सुदृढ़ता के प्रतीक और आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने वाले लौह पुरुष थे। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के समय देशभर की रियासतों को अखंड भारत का हिस्सा बनाने का दुष्कर कार्य सरदार पटेल ने कर दिया। नई दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में आज स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में सरदार पटेल 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ यह मार्च आजादपुर चौक पर संपन्न हुआ, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली।
इस दौरान श्री खंडेलवाल ने पदयात्रा में शामिल लोगों को स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने न केवल एक भारत का सपना देखा था बल्कि अलग अलग रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। श्री खंडेलवाल ने कहा कि सरदार पटेल के अदम्य साहस, प्रशासनिक कौशल और अटूट राष्ट्र निष्ठा ने भारत की नींव को सुदृढ़ बनाया। वे सच्चे अर्थों में भारत की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। श्री खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से न केवल सरदार पटेल के योगदान को अमर किया है बल्कि नई पीढ़ी को भी उनके आदर्शों से जोड़ने का कार्य किया है। इस मार्च में स्कूली छात्र, युवा, एनसीसी कैडेट्स और सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोज।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज एक समाचार लेख साझा किया, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने कबाड़ बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए। लेख के अनुसार सरकार ने पिछले महीने स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर यह बड़ी रकम अर्जित की। समाचार लेख में यह भी बताया गया कि 2021 में शुरू हुए वार्षिक अभियान के बाद से कबाड़ बेचकर सरकार की कुल कमाई लगभग 4,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत दो नाबालिग बच्चों को उनके परिवार से सकुशल मिलवाया है। पुलिस ने बताया कि यह दोनों नाबालिग करण विहार और सुलेमान नगर से लापता हो गए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि 2021 से एक एक महीने तक चलने वाले 5 समर्पित वार्षिक स्वच्छता अभियानों के माध्यम से कबाड़ के निपटान से कुल 4,085 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कबाड़ बेचकर अर्जित की गई यह राशि एक मेगा अंतरिक्ष मिशन या कई चंद्रयान अंतरिक्ष मिशनों के कुल बजट के बराबर हो सकती है।
श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया था। जल्द ही ये एक जन आंदोलन में बदल गया और पहले वर्ष में ही 4,00,000 से अधिक शौचालय बनाए गए। श्री सिंह ने कहा कि सरकारी कार्यालयों से अनावश्यक फाइलों और टूटे हुए फर्नीचरों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस अभियान में एक नया आयाम जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2021 में ये निर्णय लिया गया कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अक्टूबर माह के दौरान एक समर्पित विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 3 वर्षों से कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रैप की भी भारी मात्रा जमा है, जिसका निपटान न केवल सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है बल्कि रिसाइकलिंग के माध्यम से कचरे से धन भी अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष विशेष स्वच्छता अभियान के चौथे भाग के अंत में लगभग 3,300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि 2050 तक देश की शहरी आबादी 87,60,00,000 से अधिक होने का अनुमान है। श्री साहू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र लगभग 70% से अधिक का योगदान देंगे। श्री साहू ने बताया कि स्वच्छ और सुदृढ़ शहरी विकास में पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए हरित और हिमालयी शहर केंद्रित निधि नामक 1,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी द्वितीय चरण और नवीन वित्त पोषण जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार समावेशी और आत्मनिर्भर शहरों के निर्माण के लिए काम कर रही है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करेगा। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 2014 के 18% से बढ़कर 2024 में 80% हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के राज्य प्रदूषण नियामकों को प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये कार्रवाई गंगा और यमुना सहित महत्वपूर्ण जल निकायों से बिना शोधित अपशिष्ट पदार्थों का प्रवाह करने वाले 1,700 से अधिक उद्योगों के खिलाफ की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वायु प्रदूषण से लड़ाई में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर SK शर्मा और एम्स के ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मित्तल हमारे स्टूडियो से श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता आज बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 2 के तहत प्रतिबंध पहले ही लगा दिए हैं। राजधानी में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल दिल्ली में हल्की धुंध छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली सरकार अगले महीने से 187 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत करेगी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद के गठन की मांग की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।